एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार, अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र AI की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम एक ऐसी शख्सियत की जिंदगी और सोच की गहराइयों में उतर रहे हैं जिनका नाम टेक्नोलॉजी और डिजाइन की दुनिया में क्रांति का पर्याय बन चुका है।
स्टीव जॉब्स।
हाँ, स्टीव जॉब्स। और हमारे सफर का आधार है वॉल्टर आइजैक्सन की लिखी उनकी मशहूर जीवनी। ये किताब सिर्फ एप्पल के सह संस्थापक की कहानी नहीं है,
नहीं बिल्कुल नहीं,
बल्कि एक ऐसे दूरदर्शी इंसान की दास्तान है जिसने पर्सनल कंप्यूटर से लेकर एनिमेशन, संगीत, फोन और डिजिटल प्रकाशन तक, मतलब कई उद्योगों का चेहरा ही बदल दिया हमेशा के लिए।
बिल्कुल, और उनकी कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, शायद पहले से भी ज्यादा। ऐसा इसलिए क्योंकि स्टीव जॉब्स का व्यक्तित्व वो बहुत जटिल था, तीव्र था और अक्सर उसमें विरोधाभास भी दिखते थे।
हाँ,
और यही चीज, मतलब उनका ये कॉम्प्लेक्स नेचर सीधे तौर पर एप्पल की जो अविश्वसनीय सफलता है ना और उसकी स्थायी विरासत, उससे जुड़ा है।
अच्छा,
ये समझना वाकई दिलचस्प है कि कैसे एक अकेले इंसान का जुनून, उसकी वो जिद, उसका एक खास नजरिया जिसे वो मानविकी और प्रौद्योगिकी के चौराहे पे खड़ा होना कहते थे,
हाँ, वो फ्रेज,
हाँ वही, कैसे वो नजरिया इनोवेशन का इतना शक्तिशाली इंजन बन सकता है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं है,
नहीं,
ये मानवीय महत्वाकांक्षा और रचनात्मकता की भी कहानी है।
और इस कहानी को कहने के लिए वॉल्टर आइजैक्सन को चुनना, ये भी स्टीव जॉब्स के अंदाज को दिखाता है ना।
हाँ बिल्कुल,
आइजैक्सन तो खुद जाने माने जीवनी लेखक हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन, अल्बर्ट आइंस्टीन, इन सब पर लिख चुके हैं। CNN के CEO रहे, टाइम मैगजीन के संपादक, मतलब उनकी विश्वसनीयता तो जाहिर है।
हाँ, और सबसे अहम बात यह है कि जॉब्स ने खुद आइजैक्सन को चुना था।
अच्छा,
हाँ, उन्होंने न सिर्फ 2 साल में 40 से ज्यादा लंबे इंटरव्यू दिए, बल्कि आइजैक्सन को 100 से ज्यादा लोगों से बात करने की पूरी आजादी दी, परिवार, दोस्त, सहयोगी, यहाँ तक कि उनके कॉम्पिटिटर्स से भी।
कमाल है।
और उससे भी कमाल की बात ये कि जॉब्स ने प्रकाशन से पहले किताब पढ़ने का अपना अधिकार भी छोड़ दिया।
ये तो बड़ी बात है।
बहुत बड़ी बात। ये उनकी इच्छा दिखाता है कि कहानी बिना किसी लीपापोती के पूरे सच्चाई और जटिलता के साथ सामने आए, चाहे वो थोड़ी असहज ही क्यों ना हो।
तो चलिए इस असाधारण जिंदगी के सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। उनके शुरुआती सालों से शुरू करते हैं जहां अक्सर भविष्य की नींव छिपी होती है।
हाँ बिल्कुल। तो स्टीव जॉब्स का जन्म 2 अविवाहित स्नातक छात्रों के यहाँ हुआ था, जिन्हें बाद में पॉल और क्लारा जॉब्स, एक वर्किंग क्लास कपल, ने गोद ले लिया। और इस बात का, मतलब गोद लिए जाने का, उन पर ताउम्र गहरा असर रहा। एक तरफ छोड़ दिए जाने का एहसास था तो दूसरी तरफ चुने जाने का।
हाँ, ये द्वंद्व,
हाँ, इसने उनमें एक तरह की खास होने की भावना भरी, लेकिन साथ ही चीजों पर कंट्रोल रखने की एक तीव्र इच्छा भी पैदा की।
उनका पालन पोषण कैलिफोर्निया की सिलिकॉन वैली में हुआ,
जो उस वक्त उभर रही थी।
बिल्कुल, वो समय इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का केंद्र बन रही थी।
उनके पिता मैकेनिक थे और उनसे स्टीव ने बारीकी से काम करने का हुनर सीखा, मतलब क्राफ्ट्समैनशिप का महत्व। बचपन से ही इलेक्ट्रॉनिक्स में उनकी गहरी दिलचस्पी थी।
लेकिन उनकी किशोरावस्था तो काफी तूफानी और विद्रोही किस्म की रही, जैसा किताब बताती है।
हाँ बिल्कुल, वो दौर ही वैसा था, काउंटर कल्चर का। उन्होंने साइकेडेलिक दवाओं का प्रयोग किया, खुद को खोजने की कोशिश में। पूर्वी रहस्यवाद और ज़ेन बौद्ध धर्म की तरफ उनका गहरा झुकाव हुआ,
जिसका असर बाद में डिजाइन पर भी दिखा।
हाँ, उनके डिजाइन और जीवन दर्शन पर बहुत असर डाला। कुछ समय के लिए प्रतिष्ठित रीड कॉलेज गए, पर जल्द ही औपचारिक पढ़ाई छोड़ दी।
छोड़ दी,
हाँ, लेकिन जाते जाते वहां उन्होंने सुलेख यानी कैलीग्राफी की एक क्लास की। उन्हें शायद तब अंदाजा नहीं था, पर यही क्लास
मैक की टाइपोग्राफी की प्रेरणा बनी।
बिल्कुल, मैक की खूबसूरत टाइपोग्राफी और एप्पल के डिजाइन सौंदर्य की प्रेरणा वहीं से आई। ज्ञान और आत्मखोज की तलाश उन्हें भारत तक भी ले गई। ये सब उनके उस दर्शन का हिस्सा था जो सादगी, अंतर्ज्ञान और अनुभव पर जोर देता था।
और फिर कहानी में एंट्री होती है दूसरे स्टीव की, स्टीव वोज़नियाक, और एप्पल का जन्म।
सही कहा, स्टीव वोज़नियाक, जो एक लाजवाब इंजीनियर थे, और स्टीव जॉब्स, जो एक दूरदर्शी करिश्माई सेल्समैन थे, उनकी जोड़ी कमाल की थी।
हाँ,
ये कहानी शुरू हुई होमब्रू कंप्यूटर क्लब से, जहां शुरुआती कंप्यूटर के शौकीनों ने क्रांति की नींव रखी थी। जॉब्स के पेरेंट्स के गराज में एप्पल 1 बना।
गैराज वाली कहानी।
हाँ, वो क्लासिक कहानी। और फिर माइक मार्कुना, जो एक शुरुआती निवेशक और अनुभवी मैनेजर थे, उनकी मदद से एप्पल कंप्यूटर कंपनी की विधिवत स्थापना हुई। वो उसके डिजाइन किए गए एप्पल टू ने तो तहलका मचा दिया।
हाँ, वो पहला कामयाब पर्सनल कंप्यूटर था।
बिल्कुल, पहला इस्तेमाल में आसान पर्सनल कंप्यूटर था जिसने एप्पल को इंडस्ट्री में एक बड़ा खिलाड़ी बना दिया।
लेकिन मैकिंटोश के साथ जॉब्स का अंदाज कुछ अलग था, है ना? ज्यादा जुनून वाला।
हाँ, मैकिंटोश प्रोजेक्ट तो पूरी तरह से जॉब्स का जुनून था। उन्होंने इसे लगभग हाईजैक कर लिया था।
ऐसा?
हाँ, उन्होंने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसकी प्रेरणा उन्हें ज़ेरॉक्स पार्क के दौरे से मिली थी,
हाँ, वो मशहूर दौरा,
हाँ, और माउस के इस्तेमाल पर जोर दिया। उनका लक्ष्य था कंप्यूटर को आम लोगों के लिए बेहद आसान और आकर्षक बनाना। मैकिंटोश टीम का माहौल भी अलग था।
वो समुद्री डाकों बनाम नौसेना वाली बात।
हाँ हाँ, वो खुद को समुद्री डाकू कहते थे, जो स्थापित नौसेना यानी IBM जैसी बड़ी कंपनियों से मुकाबला कर रहे थे। उन्होंने टीम को प्रेरित करने के लिए ऑफिस पर समुद्री डाकू का झंडा तक फहरा दिया था।
वाह।
लेकिन मैकिंटोश की शुरुआती बिक्री उम्मीद से कम रही, और इसी बीच जॉब्स ने जिस अनुभवी CEO जॉन स्कली को पेप्सी से बड़े तामझाम से यह कहकर लाए थे, क्या तुम जिंदगी भर मीठा पानी बेचना चाहते हो या दुनिया बदलना चाहते हो?
हाँ, वही मशहूर लाइन।
हाँ, उन्हीं के साथ उनका टकराव बढ़ता गया। ये एक तरह से उत्पाद केंद्रित विजनरी यानी जॉब्स और पारंपरिक मार्केटिंग केंद्रित एग्जीक्यूटिव यानी स्कली के बीच का संघर्ष था। आखिरकार 1985 में बोर्डरूम की लड़ाई में जॉब्स हार गए। उनसे सारी बड़ी जिम्मेदारियां छीन ली गईं और उन्हें अपनी ही बनाई कंपनी से इस्तीफा देना पड़ा।
ये उनके लिए बहुत बड़ा सदमा रहा होगा।
जाहिर है, बहुत बड़ा सदमा था।
ये तो कहानी का एक नाटकीय मोड़ था। एप्पल से निकाले जाने के बाद के वो साल, जिन्हें जंगल के वर्ष भी कहा जाता है, उनके लिए कैसे रहे?
देखिए, वो साल उनके लिए अपमान और हताशा भरे थे, लेकिन शायद जरूरी भी थे। उन्होंने हार नहीं मानी।
नहीं मानी।
फौरन नेक्स्ट नाम की कंपनी शुरू की, जिसने तकनीकी रूप से बहुत उन्नत क्यूब के आकार के कंप्यूटर्स बनाए।
हाँ, वो ब्लैक क्यूब।
हाँ, ये कंप्यूटर्स बहुत महंगे थे और व्यावसायिक रूप से असफल रहे। लेकिन इनके सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, मतलब नेक्स्ट स्टेप, इतनी शानदार थी कि यही बाद में एप्पल के मैक OS X ऑपरेटिंग सिस्टम की रीढ़ बनी।
अच्छा।
इसी दौरान उन्होंने एक और बड़ा दांव खेला। जॉर्ज लुकास से उनकी फिल्म कंपनी का एक छोटा सा कंप्यूटर ग्राफिक्स डिवीजन खरीदा।
पिक्सार।
हाँ, उसे नाम दिया पिक्सार, सिर्फ $10 मिलियन में। शुरुआत में जॉब्स इसे हाई एंड ग्राफिक्स हार्डवेयर कंपनी बनाना चाहते थे।
लेकिन
जॉन लैसेटर और एड कैटमूल जैसे क्रिएटिव लीडर्स ने इसे एनिमेशन स्टूडियो में बदलने पर जोर दिया। ये जॉब्स के लिए एक सीखने का दौर था, कैसे क्रिएटिव लोगों को मैनेज करें, कैसे एक अलग इंडस्ट्री मतलब एंटरटेनमेंट में काम करें।
और फिर आई टॉय स्टोरी।
हाँ, टॉय स्टोरी 1995 की जबरदस्त कामयाबी ने न सिर्फ जॉब्स को अरबपति बना दिया, बल्कि उन्हें ये भी सिखाया कि टेक्नोलॉजी और कहानी कहने की कला का संगम क्या कमाल कर सकता है। ये अनुभव उनके एप्पल में वापसी के बाद बहुत काम आया।
और फिर भी उनकी धमाकेदार वापसी उसी कंपनी में जिसने उन्हें निकाल दिया था, क्या मोड़ था।
बिल्कुल, 1997 तक एप्पल की हालत बहुत खराब थी, वो दिवालिया होने के कगार पर थी।
हाँ, वो दौर याद है।
तो एक नाटकीय मोड़ में एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद लिया और स्टीव जॉब्स सलाहकार के तौर पर वापस लौटे। जल्द ही उन्हें अंतरिम CEO बना दिया गया।
और आते ही उन्होंने बदलाव शुरू कर दिए।
हाँ, आते ही बड़े बदलाव किए। सबसे पहले उन्होंने मशहूर थिंक डिफरेंट विज्ञापन अभियान चलाया,
वो आइकॉनिक एड।
हाँ, उसमें एप्पल के किसी उत्पाद का जिक्र नहीं था, बल्कि दुनिया बदलने वाले आइकॉन्स आइंस्टाइन, गांधी, पिकासो को दिखाया गया था। संदेश साफ था, एप्पल सिर्फ कंप्यूटर नहीं बनाती, वो क्रिएटिविटी और विद्रोह का प्रतीक है।
इसने एप्पल की इमेज को फिर से जिंदा कर दिया।
बिल्कुल, इसने एप्पल की खोई हुई पहचान और ऊर्जा को वापस लौटाया। इसी दौरान उनकी ब्रिटिश डिजाइनर जॉनी आइव के साथ एक गहरी और महत्वपूर्ण रचनात्मक साझेदारी शुरू हुई,
जो बहुत लंबी चली।
हाँ, जो आने वाले सालों में एप्पल के डिजाइन रेवोल्यूशन की कुंजी बनी।
और इसके बाद तो एप्पल ने जैसे दुनिया ही बदल दी, एक के बाद एक क्रांतिकारी उत्पाद।
हाँ, ये एप्पल का दूसरा सुनहरा दौर था जॉब्स के नेतृत्व में। 1998 में रंगीन ट्रांसलूसेंट iMac आया,
वो रंगीन कंप्यूटर्स।
हाँ, जिसने बोरिंग बेज बॉक्स वाले कंप्यूटर्स के दौर को खत्म किया और डिजाइन को फिर से कंप्यूटर इंडस्ट्री के केंद्र में ला दिया। 2001 में आईपॉड और आईट्यून्स आए,
जिसने म्यूजिक इंडस्ट्री बदल दी
पूरी तरह से। ये सिर्फ एक म्यूजिक प्लेयर नहीं था, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम था, एक सुंदर डिवाइस, इस्तेमाल में आसान सॉफ्टवेयर और एक ऑनलाइन स्टोर जहां से कानूनी तौर पर गाने खरीदे जा सकते थे।
सही।
फिर 2007 में आया आईफोन,
गेम चेंजर
सचमुच, जिसने फोन की परिभाषा ही बदल दी। ये आईपॉड फोन और इंटरनेट डिवाइस का संगम था, एक क्रांतिकारी मल्टी टच इंटरफेस के साथ। स्मार्टफोन क्रांति की शुरुआत यहीं से हुई।
और फिर आईपैड।
हाँ, 2010 में आईपैड आया, जिसने टैबलेट कंप्यूटर की एक नई श्रेणी ही बना दी, जो स्मार्टफोन और लैपटॉप के बीच की जगह भरती थी।
ये सफलता की अविश्वसनीय कहानी है, लेकिन इसके साथ उनके निजी संघर्ष भी जुड़े थे, खासकर स्वास्थ्य को लेकर। यह पहलू भी छूना जरूरी है।
हाँ, ये दुखद पहलू है। 2003 में उन्हें पैनक्रिया के कैंसर का पता चला, वो भी एक दुर्लभ प्रकार का, जिसे ठीक किया जा सकता था।
अच्छा, तो इलाज संभव था।
हाँ, शुरुआती स्टेज में, लेकिन उन्होंने शुरुआत में पारंपरिक सर्जरी करवाने से इनकार कर दिया और वैकल्पिक इलाज की कोशिश की।
क्यों?
ये उनके व्यक्तित्व का हिस्सा था शायद, नियमों को चुनौती देना। लेकिन इसमें उन्होंने कीमती 9 महीने गंवा दिए, जिसका उन्हें बाद में बहुत पछतावा हुआ।
ओह।
जब उन्होंने सर्जरी करवाई, तब तक कैंसर फैल चुका था। गिरते स्वास्थ्य के बावजूद वे अपने जुनून और जिद के साथ आखिरी समय तक काम करते रहे। अक्टूबर 2011 में उनका निधन हो गया। वे अपनी पीढ़ी के सबसे प्रभावशाली और दूरदर्शी इनोवेटर के रूप में एक स्थायी विरासत छोड़ गए।
इतनी उथल पुथल भरी जिंदगी, जबरदस्त सफलता, गहरे व्यक्तिगत संघर्ष, आखिर वो कौन सी गहरी सोच थी, वो कौन से मूल सिद्धांत थे जो स्टीव जॉब्स को चलाते थे? किताब इस बारे में क्या बताती है?
आइज़ैक्सन की किताब उनके कई मूल विश्वासों और मूल्यों को उजागर करती है। सबसे प्रमुख था कला और प्रौद्योगिकी का संगम।
हाँ, ये बार बार आता है।
उनका मानना था कि महान तकनीक अकेली काफी नहीं है, उसमें उदार कलाओं मतलब ह्यूमैनिटीज का स्पर्श होना जरूरी है, सौंदर्य, सहज ज्ञान, सादगी। रीड कॉलेज की वो कैलीग्राफी क्लास और जैन बौद्ध धर्म का प्रभाव इसी सोच की जड़ में था।
वो कहते थे एप्पल टेक्नोलॉजी और लिबरल आर्ट्स के चौराहे पर खड़ी है।
बिल्कुल।
दूसरा उनका वो कुख्यात रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड।
हाँ, इसके बारे में बहुत सुना है।
ये उनके करिश्मे, आत्मविश्वास और जबरदस्त इच्छा शक्ति का मिश्रण था। वो लोगों को यकीन दिला देते थे कि जो असंभव लगता है वो किया जा सकता है।
इससे काम तो होता था।
हाँ, इसने टीमों को अविश्वसनीय काम करने के लिए प्रेरित किया। लेकिन किताब ये भी दिखाती है कि ये कई बार हेर फेर करने और सच को अनदेखा करने का जरिया भी बनता था। लोग इससे जलते भी थे, परेशान भी होते थे।
सादगी पर उनका जोर भी उनकी पहचान बन गया था। ये सिर्फ एक डिजाइन का सिद्धांत था या कुछ और गहरा? ये उनके लिए बहुत गहरा था। सादगी परम परिष्कार है, सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। ये लियोनार्डो दा विंची का उद्धरण उनका मूल मंत्र था। लेकिन ये सिर्फ ऊपरी सादगी नहीं थी। उनका मानना था कि असली सादगी हासिल करने के लिए आपको जटिलता की गहराइयों में उतरना पड़ता है, उसे समझना पड़ता है और फिर उसे हटाना पड़ता है।
जैसे आईपॉड से बटन हटाना।
बिल्कुल। या आईफोन का ऐसा इंटरफेस बनाना जिसे कोई बच्चा भी आसानी से इस्तेमाल कर ले। इसके पीछे बहुत गहरी इंजीनियरिंग और डिजाइन सोच होती थी। इसी से जुड़ा था संपूर्ण नियंत्रण, एंड टू एंड कंट्रोल पर उनका जोर।
हाँ, वो एप्पल का इकोसिस्टम,
हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्स, यहाँ तक कि रिटेल स्टोर का अनुभव, वे हर चीज को नियंत्रित करना चाहते थे।
हाँ, ये बंद बगीचे वाली सोच एप्पल की पहचान है। पर क्या किताब बताती है कि इसका कोई नकारात्मक पहलू भी था या है?
किताब इस पर संतुलित नजरिया देती है। जॉब्स का मानना था कि उपयोगकर्ता को बेहतरीन अनुभव देने के लिए ये नियंत्रण जरूरी है, ताकि सब कुछ एक साथ सहजता से काम करे, और काफी हद तक ये सफल भी रहा।
लेकिन आलोचक।
हाँ, आलोचक कहते हैं कि इससे सिस्टम बंद हो जाता है, दूसरों के लिए इनोवेशन मुश्किल होता है और उपयोगकर्ता के विकल्प सीमित हो जाते हैं। ये बहस आज भी जारी है।
सही बात है।
एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत था फोकस की शक्ति और ना कहना।
ये बहुत जरूरी लगता है।
हाँ, जब वो 1997 में एप्पल वापस आए तो कंपनी दर्जनों उत्पाद बना रही थी। उन्होंने आते ही लगभग सबको बंद कर दिया।
सबको
लगभग, और उत्पाद लाइन को सिर्फ 4 मुख्य क्षेत्रों तक सीमित कर दिया, 2 कंज्यूमर, 2 प्रोफेशनल। उनका मानना था कि 1000 चीजों को ना कहना उतना ही जरूरी है जितना किसी एक चीज को हाँ कहना।
और लोगों के बारे में उनका नजरिया भी काफी दिलचस्प था, वो हीरो और बोजो वाली बात।
उत्पाद या तो अविश्वसनीय रूप से महान, इनसेनली ग्रेट, होते थे या पूरी तरह बकवास, टोटल क्रैप?
बीच का कुछ नहीं,
बीच का रास्ता नहीं था। इससे कंपनी में उत्कृष्टता का एक बहुत ऊंचा मापदंड बना, लोग अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए प्रेरित हुए। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये था कि वो अक्सर लोगों के प्रति बहुत कठोर, अपमानजनक और क्रूर हो सकते थे। किताब में ऐसे कई किस्से हैं। और फिर मार्केटिंग उनके लिए एक प्रदर्शन कला थी। वे सिर्फ उत्पाद नहीं बेचते थे,
कहानी बेचते थे।
हाँ, वो एक कहानी, एक अनुभव, एक सपना बेचते थे। उनका 1984 वाला मशहूर सुपरबोल विज्ञापन, थिंक डिफरेंट अभियान, या उनके वो प्रोडक्ट लॉन्च प्रेजेंटेशन
स्टीवनोट्स,
हाँ स्टीवनोट्स, ये सिर्फ मार्केटिंग नहीं बल्कि सांस्कृतिक घटनाएं बन जाती थीं।
इन सब के पीछे क्या था? क्या सिर्फ बिजनेस या कुछ और?
नहीं, इन सब के मूल में था उत्पाद और उपयोगकर्ता के लिए उनका गहरा जुनून। वो चाहते थे कि उनके उत्पाद न सिर्फ उपयोगी हों बल्कि खूबसूरत हों, इस्तेमाल करने में आनंद दें।
और इसी से जुड़ा था उनका परफेक्शनिज्म।
हाँ, उनका पूर्णतावाद, परफेक्शनिज्म। वो उन छोटी छोटी बारीकियों पर भी ध्यान देते थे जो शायद उपयोगकर्ता कभी देखेगा भी नहीं। जैसे वे इस बात पर जोर देते थे कि कंप्यूटर के अंदर का सर्किट बोर्ड भी सुंदर और व्यवस्थित दिखना चाहिए।
अंदर का सर्किट बोर्ड?
हाँ, भले ही उसे कोई ग्राहक कभी खोलेगा नहीं, उनका मानना था कि सच्ची कारीगरी यही है।
उनकी जिंदगी में इतने सारे उतार चढ़ाव आए, अगर हमें तीन ऐसे निर्णायक पलों को चुनना हो जिन्होंने उनकी दिशा पूरी तरह बदल दी, तो वो कौन से होंगे, क्या लगता है?
ये चुनना मुश्किल है, पर हाँ, तीन पल वाकई बहुत महत्वपूर्ण लगते हैं। पहला, जाहिर है, स्टीव वॉजनियाक के साथ मिलकर एप्पल की स्थापना करना।
शुरुआत?
हाँ, ये सिर्फ एक कंपनी शुरू करना नहीं था, ये दो अलग तरह की प्रतिभाओं का मिलना था, वॉज की इंजीनियरिंग महारत और जॉब्स का विजनरी मार्केटिंग सेंस। इसी जोड़ी ने गैरेज हॉबी को पर्सनल कंप्यूटर क्रांति में बदल दिया। यहीं से सब शुरू हुआ।
दूसरा शायद वो होगा जब उन्हें अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया, वो तो बहुत बड़ा मोड़ था।
बिल्कुल, 1985 में एप्पल से उनका निकाला जाना दूसरा निर्णायक मोड़ था। ये उनके लिए जबरदस्त झटका था, सार्वजनिक अपमान और विश्वासघात जैसा। लेकिन जैसा अक्सर होता है, बड़ी मुश्किलें बड़े अवसर भी लाती हैं।
सही,
इसी निर्वासन ने उन्हें नेक्स्ट और पिक्सर बनाने का मौका दिया। नेक्स्ट भले ही व्यावसायिक रूप से विफल रही, पर उसने उन्हें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इंटीग्रेशन का गहरा अनुभव दिया।
और पिक्सर ने
उन्हें अरबपति बनाया।
हाँ, और सिर्फ पैसा नहीं बल्कि रचनात्मक लोगों और एक पूरी तरह अलग इंडस्ट्री को मैनेज करना सिखाया। ये जंगल के साल उनके लिए सीखने, परिपक्व होने और शायद थोड़ा विनम्र बनने का दौर थे। इसने उनकी शानदार वापसी की जमीन तैयार की। और तीसरा, निश्चित रूप से उनकी वापसी ही होगी, है ना?
हाँ, 1997 में एप्पल में उनकी वापसी तीसरा और शायद सबसे नाटकीय मोड़ था। एक ऐसी कंपनी में लौटना जो लगभग मर चुकी थी,
दिवालियां होने वाली थी।
हाँ, और उसे अगले 14 सालों में दुनिया की सबसे मूल्यवान और प्रभावशाली कंपनियों में से एक बना देना, ये उनकी दूरदर्शिता, जिद, नेतृत्व क्षमता और वापसी करने की ताकत का सबसे बड़ा सबूत है।
और इसी दौर में वो सारे क्रांतिकारी उत्पाद आए।
बिल्कुल, iMac, iPod, iPhone, iPad। ये सिर्फ वापसी नहीं थी, ये एक पुनर्जन्म था उनके और एप्पल दोनों के लिए।
स्टीव जॉब्स की कहानी जितनी प्रेरणादायक है उतनी ही जटिल भी है। आज के दौर में उनकी जिंदगी से हम क्या इंसानी सबक सीख सकते हैं? ये हमें अपने बारे में क्या सिखाती है?
बहुत कुछ। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि शुरुआती अनुभवों का कितना गहरा असर हमारी शख्सियत पर पड़ता है। जैसे गोद लिए जाने की घटना ने उनमें नियंत्रण और खास होने की जो भावना पैदा की, वो ताउम्र उनके साथ रही। ये हमें ये भी दिखाती है कि तीव्र व्यक्तित्व अक्सर दोधारी तलवार होते हैं। उनका वो वास्तविकता विकृति क्षेत्र और पूर्णतावाद जहाँ एक तरफ इनोवेशन का इंजन था, वहीं दूसरी तरफ क्रूरता और मुश्किल रिश्तों का कारण भी बना। प्रतिभा अक्सर जटिल और विरोधाभासी होती है।
और शायद असफलताओं से सीखने और वापसी करने का सबक भी बहुत बड़ा है।
निश्चित रूप से, लचीलापन और वापसी करने की क्षमता का महत्व उनकी कहानी में साफ दिखता है। 1985 का निष्कासन उनके करियर का अंत हो सकता था, लेकिन उन्होंने इसे एक नए अध्याय की शुरुआत बनाया। ये दिखाता है कि बड़ी नाकामयाबियों से भी उभरा जा सकता है बल्कि उनसे सीखकर और मजबूत बना जा सकता है।
हाँ।
उनकी कहानी जुनून का पीछा करने के महत्व को भी रेखांकित करती है। कौन सोच सकता था कि कॉलेज में शौकिया तौर पर सीखी गई कैलीग्राफी एक दिन कंप्यूटर डिजाइन के लिए इतनी अहम साबित होगी।
सही बात है।
ये दिखाता है कि अगर आप अपने दिल की सुनते हैं तो चीजें अप्रत्याशित तरीकों से जुड़ जाती हैं।
लेकिन किताब उनके व्यक्तित्व के स्याह पहलुओं को भी नहीं छिपाती, जैसा आपने कहा।
नहीं, और यही इस जीवनी की खासियत है। ये प्रतिभा की जटिलता को स्वीकार करती है। वो असाधारण रूप से प्रतिभाशाली थे, लेकिन उनमें गहरी मानवीय कमियां भी थीं। अपनी पहली बेटी लिसा ब्रेनन जॉब्स के साथ उनका शुरुआती रिश्ता,
हाँ, वो काफी मुश्किल था।
हाँ, जो उन्होंने सालों तक उसे अपनाने से इनकार किया, इसका एक दुखद उदाहरण है। ये हमें आदर्श और यथार्थ के बीच के द्वंद्व को भी दिखाता है। कैसे काउंटर कल्चर के मूल्यों, जैन सादगी में विश्वास रखने वाला व्यक्ति दुनिया की सबसे बड़ी कॉरपोरेशनों में से एक का नेतृत्व कर सकता है।
ये विरोधाभास तो था।
हाँ, और अंत में नश्वरता का सामना। कैंसर का पता चलने के बाद भी, मौत के इतने करीब होने पर भी, काम के प्रति उनका जुनून दिखाता है कि एक उद्देश्य का होना जिंदगी को कितना अर्थ दे सकता है। हालांकि
इलाज में देरी करने का फैसला,
हाँ, उनका वो फैसला ये भी याद दिलाता है कि प्रतिभाशाली लोग भी बड़ी गलतियां कर सकते हैं।
ये वाकई एक गहरी और सोचने पर मजबूर करने वाली कहानी है। अगर हमें स्टीव जॉब्स के जीवन और काम से तीन सबसे जरूरी बातें निकालनी हो जिन्हें सुनने वाले अपने साथ ले जा सकें, तो वो क्या होंगी? तीन मुख्य निष्कर्ष।
मेरे ख्याल से तीन मुख्य निष्कर्ष ये हो सकते हैं। पहला, एक भावनात्मक अंतर्दृष्टि, जुनून की परिवर्तनकारी शक्ति। अपने विजन और अपने प्रोडक्ट्स के लिए जॉब्स का जो लगभग कट्टर समर्पण था, वही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी।
वो आग।
हाँ, वो आग। इसी जुनून ने उन्हें बाधाओं को पार करने, असंभव को संभव बनाने और हजारों लोगों को प्रेरित करने की क्षमता दी। ये दिखाता है कि गहरा विश्वास और जिद सचमुच हकीकत को मोड़ सकती है।
दूसरा,
एक बौद्धिक अंतर्दृष्टि। सच्चा और टिकाऊ इनोवेशन अक्सर टेक्नोलॉजी और उदार कला, मतलब ह्यूमैनिटीज या लिबरल आर्ट्स के संगम पर होता है। सिर्फ इंजीनियरिंग या सिर्फ डिजाइन काफी नहीं है।
दोनों का मेल।
हाँ, जब तकनीकी कौशल को मानवीय मूल्यों जैसे सौंदर्य, सहज ज्ञान, सादगी और उपयोगकर्ता के अनुभव की गहरी समझ के साथ मिलाया जाता है, तभी ऐसे क्रांतिकारी उत्पाद बनते हैं जो न सिर्फ बाजार बदलते हैं बल्कि लोगों के दिलों को भी छूते हैं।
और तीसरा, एक सार्वभौमिक सबक।
हाँ, तीसरा एक सार्वभौमिक अंतर्दृष्टि। फोकस ही असली शक्ति है। चाहे व्यवसाय हो या निजी जीवन, निर्दयता पूर्वक प्राथमिकता तय करने और ध्यान भटकाने वाली हर चीज को ना कहने की क्षमता, ना कहने की क्षमता असाधारण परिणाम हासिल करने के लिए बेहद जरूरी है। कम चीजों पर गहराई से ध्यान केंद्रित करके उन्हें अविश्वसनीय रूप से अच्छा बनाना, ये एक ऐसा सिद्धांत है जिसे हर कोई अपना सकता है।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एक तरफ फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।